आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। बावनदास आजकल उदास रहा करता है।
दासी जी, चुन्नी गुसाई का क्या समाचार है?
रात में बालदेव जी सोने के समय बावनदास से बातें करते हैं।
चुन्नी गोसाई तो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया।
बालदेव जी आश्चर्य से मुंह फाड़कर देखते ही रह जाते हैं।
बालदेव जी भाई, अचरज की बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। याद है दास जी, चंदन पट्टी की सभा, तिवारी जी का लेक्चर और तनुकलाल का गीत याद करके आज भी रोमा कलप उठता है। गंगा रे जमुनवा की धार, लेकिन भारत माता भी रो रही है। बालदेव,
बावनदास को नींद नहीं आ रही है। बालदेव जी चमक उठते हैं। भारत माता अब भी रो रही है? हैं? क्या कहता है बावनदास?
बावनदास करवट लेते हुए कहता है, बिलैती कपड़ा के पिकेटिंग के जमाने में चानमल सागरमल के गोले पर पिकेटिंग के दिन क्या हुआ था, सो याद है तुमको बालदेव? चानमल मड़बाड़ी के बेटा सागरमल ने अपने हाथों सभी भोलटियारों को पीटा था। जेल में भोलटियारों को रखने के लिए सरकार को खर्चा दिया था। वही सागरमल आज नरपत नगर थाना कांग्रेस का सभापति है। और सुनोगे, दुलार चंद कापरा को जानते हो ना? वही जुआ कंपनी वाला, एक बार नेपाली लड़कियों को भगाकर लाते समय जो जोगबनी में पकड़ा गया था, वो कटहा थाने का सेक्रेटरी है। भारत माता और भी जार बेजार रो रही है।
बालदेव जी को आश्चर्य होता है। वो बावनदास से बहस करना चाहते हैं, लेकिन बावन तो खर्राटे लेने लगा। बालदेव जी के समझ में कोई बात नहीं आ रही। भारत माता जार बेजार रो रही है। बावनदास, चुन्नी गुसाई और बालदेव जी, तीनों ने एक ही दिन इस संसार के माया मोह को त्याग कर सुराजी में नाम लिखाया था। गृहस्थ चुन्नी गुसाई, 4 बीघे जमीन, 2-4 आम कटहल के पेड़, एक गाय और 2 छोटे-छोटे लड़कों का एकमात्र अभिभावक। स्वभाव से धर्मभीरु, चंदन पट्टी में सभा देखने गया, तिवारी जी ने भाखन दिया और तनुकलाल ने गीत गाया, सभी रोने लगे। चुन्नीदास के मन का मैल भी आंसुओं की धारा में बह गया। उसी दिन सुराजी में नाम लिखा लिया। चरखा, करघा, झंडा, तिरंगा और खद्दर को छोड़कर सभी चीजें मिथ्या हैं। स्वदेशी बना विदेशी पैकाट। अरे देशवा के सब धनधान विदेशों में जाए रहे, महंगी पड़त हर साल कृषक अकुलाए रहे। दुहाए गांधी बाबा। गांधी बाबा अकेले क्या करें, देश के हर एक आदमी का कर्तव्य है। का करें गांधी जी अकेले, तिलक परलोक बसे, कवन सरोजनी के आस अब ही परदेश रही। दुहाए गांधी बाबा। चुन्नीदास को अपनी शरण में ले लो प्रभु। विदेशी कपड़ा बैकॉट, नमक कानून, जेल, गांजा दारू छोड़िए प्यारे भाइयों, जेल, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जेल, 1942 जेल, सब मिलकर 10 बार जेल यात्रा कर चुका है चुन्नी गुसाई, और वो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बावनदास, पुनर्जन्म का फल अथवा सृजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड, थायमस और प्यूटिटरी ग्लैंड्स में हेर फेर, 1.5 हाथ की ऊंचाई, सांवला रंग, मोटे होंठ, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली मोटी भोड़ी आवाज, ऊंचाई के हिसाब से आवाज 10 गुना भारी, अजीब चाल मानो लुढ़क रहा हो, अज्ञात कुलशील, जन्मजात साधु, जिस ओर होकर गुजरता है लोगों की निगाहें बरबस अटक जाती, फिर ताज्जुब की हंसी मुस्कुराहट, पीछे पीछे बच्चों का हुजूम, तमाशा, कुत्ते भूखते, इंसान हंसते, गर्भवती औरतें छिप जाती अथवा छिपा दी जाती, और जब भगवान ने उसे चलता फिरता तमाशा ही बनाकर भेजा है, लोग उसे देखकर खुश ही हो लेते हैं, तो क्यों ना वो पारिश्रमिक मांग ले, दे दे मैया कुछ खाने को, भगवान भला करेंगे, सीताराम सीताराम। चंदन पट्टी की उस सभा में तिवारी जी के भाखन और तनुकलाल के गीत ने इस 1.5 हाथ के आदमी को ही झकझोर दिया था। न जाने पूर्व जन्म में किस पाप का फल भोग रहा हूं, क्या होगा ये शरीर रखकर, चढ़ा दो गांधी बाबा के चरणों में, भारत माता की खातिर।
अरे देशवा के खातिर, मजहरुल हक भैले फकीरवा से दी भैले राजेंद्र प्रसाद देशवासियों।
अरे वो तो फकीर ही है, चुन्नी गोसाई ने नाम लिखा लिया, मेरा भी नाम लिख लिया जाए। रामकिशुन बाबू की स्त्री उसे देखते ही चिल्ला उठी थी,
भगवान बावन भगवान,
उन्होंने पूर्णिया आने के लिए कहा था।
सीताराम सीताराम, वंदे महातरम वंदे महातरम।
जिले की राजनीति के जनक रामकिशुन बाबू के बंगले पर वो जिस समय हाजिर हुआ उस समय पुलिस की लॉरी खड़ी थी। दारोगा साहब इंतजार कर रहे थे। रामकिशुन बाबू अपना आभार रानी को जरूर हिदायत दे रहे थे।
वंदे महातरम वंदे महातरम, तुम्ही जाओ आमार जन्य भेभोना, ओई आखो भगवान आमार काछे निजोई असे गे छेन।
आभा रानी की आंखें आनंद से चमक उठी थी। आभा रानी ने बावन दास को भगवान छोड़कर किसी दूसरे नाम से कभी नहीं पुकारा। कुछ दिनों बाद आभा रानी भी गिरफ्तार हुई, बावन भी पकड़ा गया। पुलिस ने एक आटा डंडा लगाकर उसे भगा देना चाहा, पर पहले ही डंडे की चोट को आभा रानी ने झपट कर अपने शरीर पर ले लिया तो पुलिस के पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई।
आमार भगवान के मारो ना।
खून से लथपथ खादी की सफेद साड़ी, पत्थर को भी पिघला देने वाली करुणा से भरी बोली,
आमार भगवान।
बावन के पुनर्जन्म के सारे पाप मानो अचानक ही पुण्य में बदल गए। सूखे ढूंठ में नई कोपले लग गईं। उसके मुंह से मोटी आवाज निकली थी, माँ। महात्मा गांधी भी आभा रानी को माँ ही कहते। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बाबू आए थे, साथ में थे रामकिशुन बाबू, आभा रानी और बावन दास। बावन दास के बिना आभा रानी एक डग भी कहीं नहीं जा सकती। गांधी जी हंसकर बोले थे, माँ तुम्हारे भगवान से ईर्ष्या होती है। दंतहीन पोपले मुंह की वो पवित्र हंसी, बच्चों की हंसी जैसी। फुलकहा बाजार, लाखों की भीड़, ऊंचा मंच,
महात्मा गांधी की जय,
रह रहकर आकाश हिल उठता है,
जय,
फिर आकाश हिलता है। रेलम पेर, पुष्प वृष्टि, चरण धूली, सीटी, स्वयंसेवक,
कारण डालो, घेरा घेरा।
मंच पर आगे आगे रामकिशुन बाबू, आभा रानी के कंधे का सहारा लिए गांधी जी, वही गांधी जी,
जय जय।
आभा रानी हाथ का सहारा देकर फिर किसी को मंच पर चढ़ा रही है। कौन है वो? अरे बावन दास, बोना। गांधी जी तर्जनी से सबों को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। लाखों की भीड़ में बावन दास बंजड़ी बजाकर गाता है, एक राम नाम धन सांचा, जग में कछु न बांचा हो। आवाज दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन बावन दास डेढ़ हाथ ऊंचा ये झर आदमी कितना बड़ा हो गया है। महात्मा जी भीख मांगते हैं, हरिजनों के लिए दान दीजिए, रुपए की थैली, सोने की अंगूठी, चेन, बुताम, हार, कंगन, अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी, अकन्नी, पत्थर का टुकड़ा, किंतु सब कुछ देकर भी बावन दास से बड़ा होना असंभव। बावन दास को मानो कुबेर का भंडार मिल गया, ठूंठ के कोपल नव पल्लव हो गए। बापू 1937, पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के तूफानी दौरे पर आए हैं। बावन दास को देखकर ताज्जुब की मुद्रा बनाकर कुछ देर तक देखते ही रह गए, फिर ललाट पर बल और नाक पर अंगुली डालते हुए गांगुली जी से अंग्रेजी में बोले, आई कांट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट बुक, किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। गांगुली जी ने छूटते ही जवाब दिया, फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। अब बावन दास भजन ही नहीं गाता, विख्यान देना भी सीख गया है। वह बोलने को उठता है, माइक स्टैंड काफी ऊंचा है, ऑपरेटर हैरान है, जल्दबाजी में वो क्या करे, कभी ऊंचा कभी नीचा करता है, फिर भी बावन दास से काफी ऊंचा है माइक स्टैंड। नेहरू जी बड़ी फुर्ती से उठकर जाते हैं, माइक खोलकर हाथ में ले लेते हैं, झुककर बावन दास के मुंह के पास ले आते हैं, बोलिए। जनता हंसती है, बावन जरा घबरा जाता है। नेहरू जी मुस्कुराकर उसके गले में माला डाल देते हैं, बोलिए। प्रेस रिपोर्टरों के कीमती कैमरों के बटन एक ही साथ क्लिक क्लिक कर उठे थे। नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर बड़ी सी तस्वीर छपी थी, बावन दास के गले में माला है, नेहरू जी हाथ में माइक लेकर झुके हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था, माइक ऑपरेटर नेहरू, अगस्त 1942। कचहरी पर चढ़ाई, धाए धाए, पुलिस हवाई फायर करती है, लोग भाग रहे हैं, बावन दास ललकारता है, जनता उलट कर देखती है, डेढ़ हाथ का इंसान सीना ताने खड़ा है। बंबई से आई आवाज, जनता लौटती है, बावन दास पुलिस वालों के पांव के बीच से घेरे के उस पार चला जाता है और विजय तिरंगा शान से लहरा उठता है,
महात्मा गांधी की जय।
बावन को गांधी जी जानते हैं, नेहरू जी जानते हैं और राजेंद्र बाबू भी पहचानते हैं। प्रांत भर के लीडर और राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं। कैंप जेल में सुपरिंटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ कैदियों ने सामूहिक अनशन किया था। अंत तक बावन दास और चुन्नी गुसाई ही टिके रहे थे। 25 दिन का अनशन। रदरफोर्ड और आर्चर ने इन दोनों को देखने मांगा था। गांधी जी की कठोर परीक्षा में, सत्य की परीक्षा में, सत्याग्रह की परीक्षा में खरे उतरने वाले दो कुरूप और भद्दे इंसान। सुराजी में नाम लिखने के बाद सिर्फ दो बार बावन को माया ने अपने मोह जाल में फंसाने की कोशिश की थी। दोनों बार वह चेत गया था। मोह फांस में फंसते फंसते वह बच गया था, महात्मा जी की कृपा। एक बार रामकिशुन बाबू ने सिमरबनी से मुठिया में वसूल हुआ चावल लाने को भेजा था। चावल बेचकर रुपया ले आना, 5 रुपए 3 आने। लौटती बार सिमराहा स्टेशन बाजार में जगमोहन शाह के दुकान पर वह दही छुड़ा खाने गया था। जगमोहन शाह जलेबियां छान रहा था और सहुआइन जलेबियों को रस में डुबो रही थी। बावन दास के मन में बहुत देर तक रस में डूबी जलेबियां चक्कर काटती रही। पतराहा के फागु बाबू ने अपने बाप के श्राद्ध में कंगाल भोजन कराया था। एक युग हो गया, बावन दास ने फिर जलेबी नहीं चखी। आखिर बावन दास ने दही चूड़ा पर 2 आने की जलेबियां ले ली, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद उसे अचानक ज्ञान हुआ। उसकी आंखों के आगे से माया का पर्दा उठ गया। ये पैसे, मुठिया, उसकी आंखों के सामने गांव की औरतों की तस्वीरें नाचने लगी। हांडी में चावल डालने से पहले परम भक्ति और श्रद्धा से एक मुट्ठी चावल बाबा के नाम पर निकाल कर रख रही है। कूट पीस कर जो मजदूरी मिलती है उसमें से एक मुट्ठी, भूखे बच्चों का पेट काटकर एक मुट्ठी, और बावन ने उस पैसे से अपने जीभ का स्वाद मिटाया। कुतभंग, तब भ्रष्ट, दुहाई गांधी बाबा, क्षमा करो। बावन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे और वो कंठ में उंगलियां डालकर कह करता जाता था, सोता राम, 2 दिन का उपवास, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित। रामकिशुन बाबू ने बहुत समझाया। अमारानी परोसी हुई थाली लेकर सामने बैठी रही, लेकिन बावन ने उपवास नहीं तोड़ा। माँ, इस अपवित्र मन को दंड देने से मत रोको, अशुद्ध आत्मा मुझे बाबा की राह से डिगा देगी। माया का दूसरा फंदा। नमक कानून तोड़ने के समय श्रीमती तारावती देवी पटना से आई थी। उनकी बोली में मानो जादू था। वो जहां जाती लोग उनके भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। जवान औरत, सिर पर घूंघट नहीं, भगवती दुर्गा की तरह तेजी से जल जल करती है, सरकार को पानी पानी कर देती है। मुट्ठी भर अंग्रेजों को हम नाच नचा देंगे, गोली सूली और फांसी का डर नहीं। पुलिस दारोगा डर से थर थर कांपते हैं। अंग्रेजों को जूठे पत्तल चाटने वाले ये हिंदुस्तानी कुत्ते, जरूर उसमें भगवती का अंश है। सभा खत्म होने के बाद उनके निवास स्थान पर भी भीड़ लग जाती थी। बहुत सी बांझ निपुत्तर औरतें चरण धूल लेने आती थी। भगवती, उनके खाने पीने और आराम करने के समय भी लोग जमे रहते थे। आखिर स्वयं सेवकों के पहरे का प्रबंध करना पड़ा था। एक दिन चंदनपट्टी आश्रम में दोपहर को तारावती जी बिछावन पर आराम कर रही थी। सामने के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के इस पार ड्यूटी पर बावन दास। फागुन की दोपहरी, आम की मंजरियों का ताजा सुवास लेकर बहती हुई हवा पर्दे को हिला हिलाकर अंदर पहुंचा रही थी। तारावती जी की आंखें लग गई थी। बावन ने हिलते डुलते पर्दे के फांक से यूं ही जरा झांक कर देखा था। उसका कलेजा धक कर उठा था, मानो किसी ने उसे जोर से पीछे की ओर धकेल दिया हो। धीरे धीरे पर्दे को हिलाने वाली फागुन की आवारा हवा ने बावन के दिल को भी हिलाना शुरू कर दिया था। बावन ने एक बार चारों ओर झांक कर देखा, फिर पर्दे के पास खिसक गया, झांका, चारों ओर देखा और तब देखता ही रह गया। मंत्रमुग्ध सा, पलंग पर अलसाई सोई जवान औरत, बिखरे हुए घुंघराले बाल, छाती पर से सरकी हुई साड़ी, खद्दर की खुली हुई अंगिया, कोकटी खादी के बटन, आश्रम की फुलवारी का अंग्रेजी फूल गमफोरना, पांचों राउत का बकरा रोज आकर टप टप फूलों को खा जाता था। बावन के पैर थरथराते हैं। ये आगे बढ़ना चाहता है, वो जानता है। वो इस औरत के कपड़े को फाड़कर चित्ती चित्ती कर देना चाहता है। वो अपने तेज नाखूनों से उसके देह को चीर फाड़ डालेगा। वो एक चीख सुनना चाहता है। वो अपने जबड़ों से पकड़कर उसे झकझोरेगा। वो मार डालेगा इस जवान गोरी औरत को। वो खून करेगा। हैं, सामने की खिड़की से कौन झांकता है? गांधी जी की तस्वीर, दीवार पर गांधी जी की तस्वीर, हाथ जोड़कर हंस रहे हैं बापू।
बाबा, धधकती हुई आग पर एक घड़ा पानी। बाबा, छिमा छिमा,
दो घड़े पानी।
दुहाई बापू,
पानी पानी पानी, शीतल जल ठंडक। बावन आंखें खोलता है। रामकिशुन बाबू पानी की पट्टी दे रहे हैं। माँ पंखा झल रही है। गांगुली जी चुपचाप खड़े हैं और घबराई हुई तारावती कह रही है,
चीख सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा ये धरती पर छटपटा रहा है।
दूसरे दिन अभारानी एक गिलास टमाटर का रस देते हुए बोली थी,
भगवान आज थे के तुम्हाए रोज एक गिलास ऐ रस और रात्रे दूध खेते हबे।
लेकिन बावन तो 7 दिनों का उपवास व्रत ले चुका था। आत्मशुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, प्रायश्चित। आभारानी ने गांगुली के पास जाकर धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी।
गांगुली जी, आप माँ को समझा दीजिए, मैं व्रत तोड़ नहीं सकता।
कल माया ने, गांगुली जी ने हंसते हुए आभारानी से कहा था,
भगवान एर व्रत भंग हुआ असंभव, कारण गुरुत्तर तबे अपनार भाग्य भालो। जे बेचारा के सूरदा शेर कथा मने पड़े नी, नहले एतकन आर भगवान एर चोक थाक तो ना।
अर्थात भगवान का व्रत भंग होना संभव है। आपका भाग्य अच्छा है कि उन्हें सूरदास की बात याद नहीं आई, वरना अब तक भगवान की आंखें नहीं रहती। आभारानी अवाक होकर गांगुली जी की ओर देखती रह गई थी।
की जानी बापू,
देवताओं और मंदिरों के नगर बनारस में रहकर भी आभारानी को सबसे पहले अपने भगवान की याद आती है। कभी कभी गांगुली जी के नाम मनी आडर आता है,
भगवान एर कपड़ेर जन्य, भगवान एर दूधेर जन्य।
और वही बावनदास कहता है, भारत माता जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को लक्ष्मी दासन की याद आती है, वो भी रो रही थी, लेकिन कालीचरण सोसलेट पार्टी। बालदेव निराश नहीं होगा, उसे नींद नहीं आ रही है, बहुत खटमल है। हाँ, वो कल बावनदास से पूछेगा, यदि घर में खटमल ज्यादा हो जाए तो क्या घर में ही आग लगा देनी चाहिए।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।